हवेली का माहौल आज कुछ अलग था। दोपहर की हल्की धूप बड़े बड़े खिड़कियों से छनकर अंदर आ रही थी, लेकिन फिर भी घर में एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। ऊपर के कमरे में रत्ना देवी बिस्तर पर टिक कर बैठी थीं। चेहरे पर हल्की थकान थी, लेकिन आंखों में अब भी वही पुराना तेज। तभी दरवाज़ा खुला और अंदर आए आर्यन, अदिति, रम्या और विशाल। दादी, आर्यन ने धीरे से पुकारा। रत्ना देवी की नज़र उठी और जैसे ही उन्होंने बच्चों को देखा, उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। अरे, तुम लोग आ गए, उन्होंने धीमे से कहा। आर्यन तुरंत आगे बढ़ा और उनके पास बैठ गया। उसने उनका हाथ अपने हाथ में लिया। दादी, आप ठीक हो ना? उसकी आवाज़ में सच्ची चिंता थी। रत्ना देवी ने उसके हाथ को हल्के से दबाया। तुम आ गए हो ना, उन्होंने मुस्कुराकर कहा। अब ठीक हो जाऊंगी। अदिति भी पास आ गई। दादी, डॉक्टर क्या कह रहे हैं, उसने पूछा। डॉक्टर तो बस दवाई दे रहे हैं, रत्ना देवी ने हल्की हंसी के साथ कहा। असल दवा तो तुम लोग हो। कमरे में एक पल के लिए हल्की सी गर्माहट भर गई, लेकिन तभी दरवाज़ा फिर खुला और अंदर आई अक्षरा। उसके चेहरे पर वही कॉन्फिडेंस, वही हल्की सी मुस्कान, जैसे उसे किसी की परवाह ही नहीं। जैसे ही वो अंदर आई, चारों की नज़रें एक साथ उसकी तरफ उठीं। कमरे का माहौल एकदम बदल गया। आर्यन की आंखों में सख्ती आ गई, अदिति के होंठ सख्त हो गए। रम्या और विशाल ने एक दूसरे की तरफ देखा। अक्षरा ने सबको देखा, फिर सीधे आर्यन की तरफ बढ़ी। आर्यन बेटा, उसने मीठे लेकिन चुपते हुए अंदाज में कहा, तुम्हारी माँ बनने वाली हूँ। वो उसके बिल्कुल सामने आकर खड़ी हो गई। पैर नहीं छूओगे? कमरे में एक पल को सन्नाटा छा गया। आर्यन ने उसकी तरफ देखा, लेकिन उसके चेहरे पर कोई झुकाव नहीं था, बस ठंडी सी नज़र। तभी अदिति आगे आई। उसने हल्का सा ताली बजाने जैसा इशारा किया। अरे, ये तो रह ही गया। फिर वो सीधे अक्षरा के सामने आकर खड़ी हो गई। मैं छूती हूं ना, उसने तंज भरे मीठे स्वर में कहा। सासू माँ, इतना कहकर उसने छुपने का नाटक किया, लेकिन आखिरी पल पर सीधी हो गई। उसकी आंखों में साफ मजाक था। अक्षरा के चेहरे पर एक पल के लिए खींच छलकी, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। तमीज सीखो, उसने सख्ती से कहा। सीख लेंगे, अदिति ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अभी टाइम है। रत्ना देवी ये सब चुपचाप देख रही थी। उनकी आंखों में चिंता की एक हल्की सी रेखा उभर आई। बस, उन्होंने धीमे लेकिन ठोस स्वर में कहा, ये अस्पताल नहीं है, लेकिन बीमार का कमरा है, थोड़ा शांति रखो। सब कुछ कुछ सेकंड के लिए शांत हो गया। फिर आर्यन ने धीरे से दादी का हाथ छोड़ा। आप आराम करो, उसने कहा। चारों धीरे धीरे कमरे से बाहर निकल गए। अक्षरा ने जाते हुए उनकी पीठ को देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। हॉल में चारों एक साथ खड़े थे। हवा में गुस्सा साफ महसूस हो रहा था। ये औरत, रम्या ने दांत भींचते हुए कहा, हद कर रही है। विशाल ने इधर उधर देखा, फिर धीरे से कहा, धीरे, कोई सुन लेगा। लेकिन आर्यन अब चुप नहीं रह पाया। इनफ इज इनफ, उसने सख्त आवाज में कहा। तभी अक्षरा भी पीछे पीछे हॉल में आ गई। उसने सबको देखा और जैसे ही वो मुड़ी, आर्यन उसके सामने आकर खड़ा हो गया। रम्या और विशाल भी उसके पास आ गए। अक्षरा, आर्यन की आवाज ठंडी थी, जो कुछ तुम कर रही हो वो गलत है। अक्षरा ने भौं उठाई। ओ, सच में? विशाल आगे आया। तुम पापा से शादी नहीं कर सकती, समझी? रम्या ने भी जोड़ दिया। ये जगह शामली की है, आर्यन ने सीधा उसकी आंखों में देखते हुए कहा। हम ये शादी नहीं होने देंगे। कुछ सेकंड तक दोनों तरफ खामोशी रही, फिर अक्षरा हल्के से हंसी। बच्चे, उसने सिर हिलाया, बड़ों से ऐसे बात नहीं करते। उसकी आवाज़ में अब हल्की सख्ती आ चुकी थी। और जहां तक बात शादी की है, उसने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, जब विश्वनाथ खुद मुझसे शादी करना चाहता है। वो थोड़ा झुककर आर्यन के करीब आई। तो तुम लोग क्या कर लोगे? उसकी आंखों में चैलेंज साफ था। तभी अदिति आगे बढ़ी। उसकी चाल धीमी लेकिन कॉन्फिडेंट थी। वो सीधे अक्षरा के सामने आकर रुकी। वक्त पर, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम्हें सब पता चल जाएगा। अक्षरा ने उसे गौर से देखा। क्या मतलब? अदिति ने सिर थोड़ा तिरछा किया। उसकी आवाज़ अब और भी शांत थी। पापा तुमसे प्यार नहीं करते, एक पल की खामोशी, फिर उसने साफ साफ कहा, और वो ये शादी कभी नहीं करेंगे। उसके शब्द धीरे थे लेकिन असर गहरा। अक्षरा के चेहरे पर पहली बार एक हल्की सी सख्ती आई, जैसे उसे ये बात चुभ गई हो, लेकिन वो जल्दी ही संभल गई। देखते हैं, उसने ठंडे स्वर में कहा। आर्यन ने आखिरी बार उसकी तरफ देखा। हाँ, देखते हैं। चारों मुड़ गए और साथ साथ वहां से चले गए। हॉल में अब सिर्फ अक्षरा खड़ी थी। उसकी मुट्ठियां हल्की सी भींची हुई थी, लेकिन उसके होठों पर फिर वही हल्की सी मुस्कान लौट आई। गेम अभी शुरू हुआ है, उसने धीरे से खुद से कहा। ऊपर कमरे में रत्ना देवी खिड़की के बाहर देख रही थी। उनकी आंखों में बेचैनी थी, जैसे उन्हें आने वाले तूफान का अंदाजा हो। और हवेली अब एक ऐसी जन की तरफ बढ़ रही थी जहाँ रिश्ते और इरादे दोनों की असली परीक्षा होने वाली थी। हॉल में कुछ पल की खामोशी रही, फिर आर्यन, अदिति, रम्या और विशाल बिना पीछे देखे हवेली से बाहर निकल गए। उनके कदम तेज थे और चेहरों पर साफ गुस्सा। दरवाजा बंद हुआ और उसी खामोशी में पीछे से दो साए आगे बढ़े, अक्षरा के माता पिता। वे दोनों अब तक सब कुछ सुन चुके थे। उसकी माँ ने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा। बेटी, ये लोग ऐसे मानने वाले नहीं है, उनकी आवाज में चिंता थी। ये तेरी शादी विश्वनाथ से नहीं होने देंगे, उसके पिता ने भी गंभीर स्वर में कहा। हमें संभल कर चलना होगा, ये बच्चे नहीं है अब, सब समझते हैं। अक्षरा कुछ पल चुप रही, उसकी नजरें दरवाजे पर टिकी थीं, जहां से अभी अभी वो चारों गए थे। फिर धीरे धीरे उसके होंठों पर एक ठंडी सी मुस्कान आई। आप दोनों बस मेरे साथ रहो, उसने शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहा, बाकी इन्हें मैं देख लूंगी। उसकी आंखों में अब एक अजीब सा आत्मविश्वास था, जैसे वो पहले ही कोई चाल चल चुकी हो। उसकी माँ ने हल्की चिंता से उसे देखा, लेकिन अक्षरा पूरी तरह तैयार लग रही थी। ये खेल, उसने मन ही मन कहा, मैं ही जीतूंगी।